그렇게안써
நமோ ஹரிஹந்தானம் நமோ சித்தானம் நமோ ஆரியானம் நமோ உபச்சாரணம் நமோ லோயே த்ரிகாலவர்த்தி சுபசாமம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கை மங்களம் குந்தகுந்தாரியோ ஜெயந்த் தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கல்ய மங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம் ஓம்கார பிந்து சம்யுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம் காமதம் மோக்ஷதம் சைவ ஓம்காராய நமோ நமஹ. நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்ய சகாஸ்தே சித் ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர்சிதே அக்னாந்தி மிராந்தானாம் ஜ்ஞான ஜன சலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேனம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஆத்மா ஜ்ஞானம் ஸ்வயம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானாத் அன்யத் கரோதி கிம் பிரபாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோயம் வ்யவஹாரம். மங்கள்மய மங்கள்கரன் வீத்ராக விஜ்ஞான நமுதா ஹி ஜாதே பே அரிஹந்தாதி மகான். ஓம் நம சிதேபியோ நம சிதேபியோ நம சிதேபியோ. ஜினேந்திர பரமாத்மா கே சாசன்மே குன்குன் ஆச்சாரிய பகவான் கி ஆம்னாய்மே அமரச்சந்திர ஆச்சாரிய பகவான் கி பரம்பராமே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா பரக்ஷேத்ரமே பதார்ப்பணம் ஹுவா வோ அப்னே ஆப்மே எக் ஸ்வயம்மே எக் மஹான் அச்சம்பா ஹை. பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கோ பானே சே பரக்ஷேத்ர கே பவ்ய ஜீவோ கோ சுத்த நயிகா விஷய் ஐசா ஜோ பரமாத்ம தத்துவ ஹை உஸ்கா ஜான் ஸ்ரத்தான் கா யதார்த்த ஸ்வரூப் சுன்னே ஒரு சமஜ்னே கோ லியே மிலா. க்யோங்கி குருதேவ் கே சமய கி யதி பாத் கி ஜாய தோ ஜினாகம் கி மௌஜூத்கி ஹோனே பர் பி சுதாத்மா கேசா ஹை ஒரு உஸ்கா ஸ்வரூப் கிஸ் தரஹ ஸே ஜானா ஜாதா ஹை உன்கி சர்ச்சா பிராய லுப்த ஹோ கயி தி. லேகின் பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ நே ஜின்வாணி மே சே ஆச்சாரிய பகவந்தோ கே ஹ்ருதய கோ கோல் கர் சமயசார பரமாகம் கே குன்குன் ஆச்சாரிய தேவ் ஒரு அமிரச்சந்திர ஆச்சாரிய தேவ் கே ஹ்ருதய கோ ஸ்பஷ்ட கர்த்தே ஹுவே சட்வி காதா மே ஜோ பாத் பதாயி வோ பாத் சஹி மே வஸ்து கி அத்புத வ்யவஸ்தா அலௌகிக வ்யவஸ்தா ஒரு திரவிய கா நிச்சய பெலே பேராகிராஃப் மே ஒரு பர்யாய கா நிச்சய தூசரே பேராகிராஃப் மே பத்லா கர் வஸ்து கி வ்யவஸ்தா அத்யந்த ஸ்பஷ்ட கி ஹை. அநாதி கால சே ஜீவ கோ ஜிஸ் விஷய கா பரிச்சய ஹை வஹி சே சம்ஜா கர் சாபேக்ஷ சே நிரபேக்ஷ தக் லானே கா பிரயத்ன வ்யவஹார சே நிச்சய சம்ஜானே கா பிரயத்ன ஆச்சாரிய பகவான் நே ஜிஸ் தரஹ சே பத்லாயா வோ பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ நே ஸ்பஷ்ட கியா. அப்ப யாப் கேத்தே ஹை கி தோடா அப்பா தோ லிட்டி சலி தி ஃபிர் வீ சேஸ்கோ தோராத்தே ஹை வடி தாயக யானை கி பலவா யோகிய பதார்த்தனா ஆக்காரே தவா தி அக்னி நே தஹன் கேவாயி சே. ஊப்பர் மே கஹா கயா ஐசா தியேய கா ஸ்வரூப் ஐசா திரவ்ய கா நிச்சய ஐசா திருஷ்டி கா விஷய சம்யக் தர்சன் கா விஷய ஐசா பகவான் ஆத்மா ஜெசா கஹா கயா வைசா ஹீ ஹை ஒரு வோ ஏக பாவ ஜோ க்யாயக ஏக பாவ ஹை உஸ்கோ திருஷ்டி மே லேத்தே ஹி சம்யக் தர்சன் சம்யக் ஜ்ஞான் கா ஜன்ம ஹோதா ஹை. லேகின் ஐசா ஆத்மா ஹோனே பர் பி சன்சார அவஸ்தா மே ஜீவ கி ஜோ ஸ்திதி ரஹி உஸ்கா ஜ்ஞான் கரா கர் ஸ்வபாவ கி அபேக்ஷா சே தேகா ஜாய தோ க்யாயக பாவ சே ஜட்பாவ ரூப் நஹீ ஹுவா உஸ்லியே பிரமத் பி நஹீ ஒர் அப்ரமத் பி நஹீ யே கஹ கர் வஹி க்யாயக பாவ கோ சமஸ்த அந்ய திரவியோ கே பாவோக சே பின்பணே உபாசனை மே ஆத்தே ஹி சுத்த கேனே மே ஆத்தா யே பாத் பத்லாயி. அப்ப யஹாம் பர் யே சம்ஜாதே ஹை கி திருஷ்டாந்த கே மாத்யம் சே கி அநாதி கால சே வஸ்து கி வ்யவஸ்தா ஜோ ஸ்பஷ்ட நஹீ ஹுயி அப்ப யே சித்தாந்த கோ சமஜ லே तो क्षण मात्र में आत्मा जैसा है ऐसा समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा समझ में आ जाए उसके लिए उस जीव को, उस आत्मार्थी को, उस मुमुक्षु को तत्व निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। तत्व निर्णय किए बिना वस्तु के ऊपर लक्ष्य और दृष्टि नहीं जाती। अब वस्तु के ऊपर लक्ष्य और दृष्टि किस तरह से जाए, तो अभी यहाँ ज्ञान की व्यवस्था बतलाते कि ज्ञान के अंदर में क्या होता है। अब क्या होता है उसको सिद्धांत को समझाने से पहले दृष्टांत देते हैं कि जो पदार्थ जलने योग्य पदार्थ के आकार से अग्नि होती है, उस आकार को देखकर अग्नि को दहन कहने में आता है, अग्नि को बाड़नार कहने में आता है। अब सही माने में देखा जाए तो लकड़ी एक भिन्न पदार्थ और अग्नि एक भिन्न पदार्थ। अग्नि के द्रव्य गुण पर्याय अग्नि में और लकड़ी के द्रव्य गुण पर्याय लकड़ी में। लेकिन लकड़ी में अग्नि का संयोग को देखकर, अग्नि का निमित्त को देखकर अग्नि से लकड़ी जल रही है ऐसा कहने में आता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अग्नि लकड़ी को छूती नहीं। अब जब अग्नि लकड़ी को छुए नहीं तो अग्नि लकड़ी को जलावे कैसे, ये बात समझने योग्य है। सही माने में देखा जाए तो लकड़ी जो जलती है वो अग्नि के कारण नहीं जलती, और लकड़ी है तो अग्नि का अस्तित्व है ऐसा नहीं है, और अग्नि है तो उसके कारण लकड़ी जलती है ऐसा भी नहीं है। माने अरस परस दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन निमित्त को देखकर ऐसा उपचार कहने में आता है कि अग्नि से लकड़ी जल रही है, ऐसा जो उपचार किया उसको सच्चा मानकर, असद्भुत का कथन को सच्चा मानकर वहीं पे जीव रुक जाता है, और वही समझ उसकी बन जाती है कि अग्नि किसको कहते हैं, कि जो लकड़ी को जलावे सो अग्नि, जो कोयला को जलावे सो अग्नि, जो छाणा, गुजराती में छाणा के अडा है, हिंदी में अडा है, उसको जो जलावे सो अग्नि, ऐसा जीव को संस्कार पड़ गया। तो उससे क्या होता है कि ज्ञेय को जाने सो ज्ञान, जिसे पहले पैराग्राफ के अंदर में अकर्ता बतलाने के लिए भगवान आत्मा करनार नहीं है जानना रहे ऐसा व्यवहार कहा। अब यहाँ पे आत्मा का कार्य क्या, तो जो जाने सो आत्मा, पर को जाने सो आत्मा, सो पर को जाने सो आत्मा, ऐसा भी व्यवहार कहा, लेकिन उसने इस व्यवहार को सच्चा मान लिया, और सच्चा मानने से वस्तु की व्यवस्था से वो दूर हो गया। अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं, उसी तरह से ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं। लेकिन जिसके अंतरंग में बात बैठी हुई है कि अग्नि लकड़ी को जलाती है, अब जलाती है कैसे, क्यों बोलते हैं कि जैसा लकड़ी का आकार ऐसा अग्नि का आकार को देखकर वो अग्नि लकड़ी को जलाती है ऐसा कहने में आता है। उसी तरह से जैसे ज्ञेय है वैसे ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं ज्ञान के अंदर में, तो उसको देखकर ऐसा कहा जाता कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। लेकिन जिस तरह से लकड़ी अग्नि को जलाती नहीं, लकड़ी अग्नि का, अग्नि लकड़ी का बाड़नार नहीं, ऐसे ज्ञान ज्ञेय का जानना नहीं, ये वास्तविकता है। क्यों जानना नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञेयों के अंदर में, पर ज्ञेय में तन्मय नहीं होता, वो तन्मय नहीं होता, उसलिए वास्तविकपने उसको नहीं जानता। जब वास्तविकपने उसको नहीं जानता, ऐसा होने पर भी ज्ञान के अंदर में ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं, जानने में आते हैं, प्रकाशित होते हैं, लेकिन सच माने में देखा जाए तो उसको ये आदत जो पड़ी है कि ज्ञेय को जाने सो ज्ञान, उससे उसको एक भ्रांति होती है। ज्ञेय से ज्ञान तन्मय नहीं होने पर भी उसको ऐसी भ्रांति होती है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ये व्यवहार का वचन था कि करता नहीं है वो बतलाने के लिए, वहाँ पे लाने के लिए ज्ञान ज्ञेयों को जानता है ऐसा समझाया गया था। ये असद्भुत व्यवहार का कथन था, असद्भुत व्यवहार का वचन था, लेकिन उसको उसने स्वरूप मान लिया, निश्चय मान लिया, वस्तु की व्यवस्था मान ली, और उसी की वजह से ज्ञेय से उसका लक्ष्य नहीं हटने से वो ज्ञेय उनका निमित्त बन गया, और निमित्त से वैसा ही नैमित्तिक भाव उत्पन्न होते रहा। यह अनादि काल की परिपाटी चलती आई है। अब उसको ये बात समझना होगा कि अग्नि लकड़ी के आकार होने से सही माने में अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं है। लकड़ी के अंदर में यदि जलने की योग्यता ना हो तो कौन जला सकता है उसको, और उसकी अपनी योग्यता नहीं हो तो जलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अब यदि अग्नि से लकड़ी जलती हो तो अग्नि हवा को जला दे, आकाश द्रव्य को जला दे, क्यों नहीं जला सकती? उसकी योग्यता जिसकी होती है उस योग्यता के मुताबिक ही, उस पर्याय की जो तत्समय की योग्यता के मुताबिक ही लकड़ी जलती है, उसको जलाने वाला अग्नि होता ही नहीं। ज्ञान के अंदर में ये जानने में आते हैं, जनित जाते हैं, लेकिन ज्ञान उनको जानता नहीं। अब क्या कहते हैं आचार्य भगवान उसको, थोड़ा गुरुदेव श्री के मुखारविंद से पढ़े फिर इसको आगे लेते हैं। दो सौ बारह नंबर का पृष्ठ पे क्योंकि इसके अंदर में दो बात की थी आचार्य भगवान ने, दायाकार और इधर में लिया ज्ञाकार, उधर में लिया दायकृत, इधर में लिया ज्ञेयकृत। दृष्टांत से सिद्धांत समझाते हैं, दृष्टांत पहले समझ में आ जाए तो फिर सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सही माने में देखा जाए तो जो जलने योग्य पदार्थ है उसके आकार से दाह्य यानी अग्नि हुई तो उस अग्नि को दहन कहने में आता है। जीव को इस बात की प्रसिद्धि है, इस बात की पहचान है, इस बात की समझ है। क्या समझ है? कि लकड़ी को जलावे सो अग्नि, ये बात संसारी जन को प्रसिद्ध है। फिर भी तो भी दायकृत अशुद्धता उसे नहीं है। दायकृत अशुद्धता यानी लकड़ी है तो अग्नि का अस्तित्व है ऐसा नहीं है। अग्नि अग्नि से है और लकड़ी लकड़ी से है। लकड़ी के पर्याय के अंदर में जलना अपनी तत्समय की योग्यता के कारण शीतल पर्याय का व्यय और उष्ण पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसको जलाने वाली अग्नि नहीं है। यदि लकड़ी के कारण अग्नि जलती है तो फिर दायकृत अशुद्धता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसलिए दायकृत अशुद्धता भी नहीं है। अब इस संदर्भ में गुरुदेव श्री क्या कहते थे, दो सौ बारह नंबर का प्रश्न में दूसरा पैराग्राफ है। बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकारे थवाथी अग्नि ने बाड़नार कहवाय छे। तो बाड़नार तो अवाज एवो आव्यो के बढ़वा योग्य छे तेने बाड़े छे, एटले के एने आकारे थई छे एम नथी। ए वक्ते पण अग्नि पोताना आकारे थयेली छे, बढ़वा योग्य पदार्थना आकारे अग्नि थई, ए अग्नि पोताना आकारे स्वयं पोताथी थई छे। क्या कहते हैं? जो जलने योग्य पदार्थ के आकार से अग्नि हुई है तो उस अग्नि का आकार को देखकर बाड़नार कहने में आता है, लेकिन ये बाड़नार का आवाज आया तो ऐसा लगता है कि वो बढ़वा योग्य पदार्थ को अग्नि जलाती है, अग्नि बाढ़ती है, इसलिए उसका आकार से हुई है ऐसा नहीं है। उस वक्त अग्नि अपने आकार रहेल हुई है। देखिए पहले पैराग्राफ के अंदर में होने वाली बात की, इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर में थवा वाली बात, वहाँ हुआ थी बात और नहीं यहाँ थवा थी बात। हुआ थी बात माने शुद्धात्मानी बात हुआ थी करी ने परिणामनी बात थवा थी करे छे। हुआ वाली व्यवस्था त्रिकाण हो थवा वाली व्यवस्था क्षणिक हो, पर्यायनी अंदर में क्षणिकता है, द्रव्यनी अंदर में त्रिकाणता है। हवे थाय छे के होवाथी अने थवाथी, तो अहीं ज्यारे थवाथीनी वात करे छे त्यारे अग्नि लाकड़ाने आकारे थई, तो लाकड़ाने आकारे थवाथी जेने बाळनार कही देवामां आव्युं, तो एनो अवाज एवो आवे छे, एनो सूर एवो आवे छे कि जे बळवा योग्य छे ने ई बाळे छे। लकड़ी जलने योग्य है उसको जलाती है ऐसा सूर आता है, लेकिन उसके आकार से हुई है ऐसा नहीं है। अग्नि अपने आकार पर रही हुई है। ये अग्नि का जो परिणमन जो हो रहा है, आकार जो हो रहा है, अग्नि का अपना खुद का आकार है और वो स्वयं उस आकार से हुई है। उसमें लकड़ी का कोई भी देन कुछ भी नहीं है, आदान प्रदान कुछ भी नहीं है। अग्नि स्वयं उस आकार से स्वयं हुई है। अजीतो दृष्टांत छे पछी सिद्धांत तो अंदर उतार से। तो आ दैयकृत बढ़वा योग्य पदार्थना आकारे थवाथी, आकारे थयेली होवाथी अशुद्धता अग्नि ने नथी। ये अशुद्धता अग्नि ने एने लईने नथी। ये तो अग्नि पोताने आकारे थयेली छे। जे आकार छे ये अग्निनो आकार छे, बढ़वा योग्य पदार्थनो आकार ये नथी। क्या कहते हैं, वो अग्नि का स्वयं का आकार है उस रूप। वो लकड़ी लंबी है तो अग्नि लंबी हुई है, लकड़ी खड़ी है तो अग्नि खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। ये अग्नि का खुद का आकार है, जिस आकार रूप अग्नि परिणमित हुई है उसके अंदर में लकड़ी का कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। जीव को जिस वस्तु का परिचय है, इस वस्तु से आचार्य भगवान समझाते हैं कि प्रभु सही माने में उष्णत अग्नि ऐसा भी जहां ना हो, उष्ण सो अग्नि ऐसा गुण भेद भी जिसमें ना हो, वहां पर दूसरे पदार्थ के आकार रूप हुई दिखती है तो उसको अग्नि कह देना, लाकड़ा को जलाए सो अग्नि, ये बात आई कहां से। सही माने में देखा जाए तो जीव को किसी भी चीज का सही माने में परिचय नहीं होने से आचार्य भगवान उसको जिसका परिचय है वहाँ से उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, कि लकड़ी को जलावे सो अग्नि। अब लकड़ी को जलाती है अग्नि, ये परिचय सबको है और इसलिए उसको बाड़नार कहते हैं। लेकिन वस्तु की व्यवस्था से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, तो एक दृष्टांत आता है, लालचंद भाई दृष्टांत हमेशा दिया करते थे कि गुरु के पास तीन शिष्य थे। एक दिन उन्होंने उपदेश दिया कि लाकड़ा ने जलावे ते अग्नि, लाकड़ा को जो जलाए सो अग्नि। दूसरे दिन कहा कि उष्ण सो अग्नि, और तीसरे दिन कहा कि अग्नि सो अग्नि। फिर चौथे दिन तीनों की परीक्षा ली, किस तरह से परीक्षा, तीनों को एक जगह बिठाया और एक दूसरे कमरे के अंदर में सगड़ी जलाई एकदम लाल घूम। अब पहला शिष्य को कहते हैं कि जाओ बाजू वाले रूम में जाकर देखो वहाँ पर क्या है। वो जाता है उस रूम में, वहाँ पे अग्नि है क्या, ऐसा पूछा उनको, अब देख के आना। तो उसकी तो समझ ये थी कि लकड़ी को जलावे सो अग्नि। वहाँ पर जाकर वहाँ पे तो न लकड़ी थी न लकड़ी जल रही थी, तो वहाँ से वापस आकर के तो साहब वहाँ पे तो अग्नि नहीं है। तो दूसरा शिष्य को भेजते हैं, तो दूसरा शिष्य भी वहाँ पर जाता है, उष्ण सो अग्नि, यहाँ उष्णता तो है नहीं। वापस आकर कहते हैं साहब वहाँ पे तो अग्नि नहीं है। तीसरे को भेजते हैं तो तीसरा अग्नि सो अग्नि, पता कैसे चले। तो अग्नि के ऊपर हाथ रखता है, अनुभव करता है और अनुभव करके कहता है कि अग्नि सो अग्नि। वापस आकर कहता है साहब वहाँ पे तो अग्नि सो अग्नि है, अग्नि है वहाँ पर। तो दूसरा शिष्य कहता नहीं है, पहला शिष्य कहता नहीं है, तू कहता अग्नि है। साहब मैंने अनुभव करके प्रमाण किया कि वहाँ पे अग्नि है, हाथ रखकर प्रमाण किया कि वहाँ पर अग्नि है। तो ये अनुभव करके प्रमाण करने वाली चीज है। गुण भेद से वस्तु सिद्ध नहीं होता, जो सद्भुत व्यवहार का विषय है। लकड़ी को जलावे सो अग्नि, उससे भी ये बात सिद्ध नहीं होती क्योंकि वो असद्भुत व्यवहार का विषय है। लेकिन सापेक्षता से निरपेक्षता तक, असद्भुत से निश्चय तक, आज संसार के भव्य जीव किसी भी प्रकार आवे उसके लिए इस दृष्टांतों के माध्यम से इस व्यवहार से निश्चय के लाने का उद्यम आचार्य भगवान ने किया है। अपन आचार्य भगवान जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे चले, तब तो वस्तु समझ में आएगी। और यदि वहाँ पे चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो जो अपनी पकड़ है उसको ही मजबूत करके निकल जाएंगे कि लकड़ी सो जलावे सो बाड़ना और ज्ञेय को जाने सो जाड़ना, ये परिचय तो है अनादिकाल से। तो बस इसी परिचय के वजह से वो ज्ञेय निमित्त बनकर अनादिकाल से वो अज्ञान रूप परिणमित होता है। ज्ञान पर को जानता है ये अज्ञान है, ज्ञान स्वपर को जानता है ये व्यवहार है, और ज्ञान ज्ञान को ही जानता है वो निश्चय है। ये बात समझने योग्य है। गुरुदेव श्री इस बात को अत्यंत स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत के ऊपर से सिद्धांत पहले चलते हैं। अब सिद्धांत पे जाने के लिए गुरुदेव श्री क्या कहते देखते हैं। बढ़वा योग्य पदार्थ ना आकार है नहीं, तेवी रीते क्यों कहा कि जिस तरह से लकड़ी की बात की, दायाकार की बात की, तेवी रीते एक न्यायाकार थवा थी कि नान स्वरूपी प्रभु ज्ञेय जनावा योग्य पदार्थ नो आकार अहीं आवा थी ये जाने के एक नेकृत आकार छे। एम नथी छे मूल पाठ के अंदर में क्या है, तेवी रीते ज्ञेयाकार थवा थी ते भाव ने नायकपणु प्रसिद्ध छे तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नथी। जेवा दायकृत अशुद्धता तेने नथी एम या ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नथी। वा दायाकार या ज्ञेयाकार, वहाँ बाड़नार दहन यहाँ पर जाड़नार, लेकिन अग्नि लकड़ी को जलाने वाली नहीं ऐसे ज्ञान परज्ञ को जानता नहीं, ये बात उसको समझनी होगी। और यदि ज्ञान उस ज्ञ को जानता है तो आत्मा का नाश होगा। बात थोड़ी सोचने लायक है, विचारने लायक है कि ज्ञेय का तसुत्ता क्यों नहीं है। तो देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, तेवी रीते ज्ञेयाकार थवा थी ज्ञान स्वरूपी प्रभु ज्ञेय जनावा योग्य पदार्थ नो आकार अहीं आवा थी ये जाने के ज्ञेयकृत आकार छे एम नथी, ये तो ज्ञाननो पोतानो ज आकार ए रीते परिणम्यो छे। ज्ञेयाकार जैसा ज्ञेय है ऐसे ज्ञेय की सापेक्षता में, ज्ञान के अंदर में जैसा ज्ञेय है वैसा आकार हुआ ज्ञान का, ज्ञान परिणाम का जैसा ज्ञेय है वैसा आकार हुआ तो ये ज्ञेयाकार कहा गया। लेकिन ये ज्ञेय का आकार नहीं है, ये ज्ञान का स्वयं का परिणमन है, वो ज्ञान के कारण ये परिणमन हुआ है। इस ज्ञान को ज्ञेय की सापेक्षता नहीं है, इस ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, ये ज्ञानाकार ज्ञानाकार रूप रहता है, ज्ञेयाकार रूप होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञेय की सापेक्षता में उसको ज्ञेयाकार कहा जाता है। तो वो ज्ञेय के कारण ज्ञानाकार नहीं हुआ, ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ। वो आकार तो ज्ञान का अपना खुद का स्वयं का अपने से हुआ है, उसका आधार ज्ञेय नहीं है, ज्ञेयकृत। क्योंकि यदि ज्ञेय से ज्ञान होता, ज्ञेय का ज्ञान होता तो ज्ञेयकृत अशुद्धता होती, तो ज्ञेय कर्ता बनता और ज्ञान कर्म बनता, तो एक पदार्थ का नाश होता, जीव का नाश होता यदि ज्ञेय का ज्ञान होता हो तो। ऐसी वस्तु की स्थिति ही नहीं है। लेकिन जो बात व्यवहार से कही गई, निमित्त की अपेक्षा से कही गई, उसको ही उसने स्वरूप मान लिया, तो ज्ञेय तो हो गया निमित्त, और ज्ञेयाकार ज्ञान का परिणमन वो हो गया नैमित्तिक। तो ज्ञेयाकार ज्ञान के अंदर में होता तो है लेकिन ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं है, ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है, तो ज्ञान और ज्ञेय के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं और कर्ता कर्म संबंध भी नहीं। लेकिन जैसी वस्तु है वैसा वो नहीं जानता, और नहीं जानने से उसका लक्ष्य पर के ऊपर जाता, और पर के ऊपर जाने से ही उसके अंदर में अपनत्व होकर अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। एक जो ज्ञेयाकार हुआ वो ज्ञान का अपना खुद का परिणाम है, ज्ञेय की अपेक्षा रखे बिना। ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के कारण नहीं होता। ज्ञान स्वयं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने वैभव से जैसा ज्ञेय है वो साकार के रूप परिणमित हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो ज्ञेयकृत अशुद्धता होती, जैसे दाह्यकृत अशुद्धता होती वैसे ही ज्ञेयकृत अशुद्धता होती। कल अपने दृष्टांत लिया था ना, कि वो पानी के अंदर में चंद्र दिखता है, पानी के अंदर में सूर्य दिखता है, पानी के अंदर में पेड़ दिखता है, तो क्या दिखता है पानी के अंदर में? एक को पानी के अंदर में पेड़ दिखता है, एक को पानी की स्वच्छता के अंदर में पेड़ दिखता है, और एक को पानी पानी और पानी दिखता है। पानी के अंदर में पानी के अलावा कुछ है नहीं, वो बात मूल है। पानी तो पानी है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, अग्नि तो अग्नि है, बाकी जो भी सापेक्ष कथन कहने में आया वो जीवों को जिस वस्तु का परिचय है वहाँ से उठाकर स्वभाव के अंदर में लाने का विशुद्ध प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया है। जैसे उसको स्वभाव समझ में आ जाए तो आत्मा की तत्काल अनुभूति, उसका लक्ष्य होकर आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो क्या कहते हैं कि फरी ने एकदम समझा एवं नहीं, जेम बढ़वा योग्य आकारे अग्नि थवाती, अग्नि ने बढ़वा योग्य पदार्थ की अशुद्धता एटले पराधीनता तेने नहीं। अग्नि को लकड़ी की पराधीनता नहीं है, जो भी जलने योग्य पदार्थ है उसकी पराधीनता अग्नि को नहीं है। अग्नि स्वयं ही उस आकार से हुई है, क्योंकि अग्नि का आकार अग्नि के साथ अविनाभावी है और लकड़ी का आकार लकड़ी के साथ अविनाभावी है। लकड़ी की जलने योग्य, जलने रूप जो योग्यता है वो लकड़ी के उस समय की तत्समय की पर्याय की योग्यता के कारण है, उसमें अग्नि का कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। ये बात जिसको समझ में आती है उसको ये बात समझ में आए बिना नहीं रहेगी कि ज्ञेयाकार ज्ञान में शरीर वाणी मन मकान पैसा सब दिखता है आकार, और उनके आकार अहीं ज्ञान थयू माटे ते ज्ञेयाकारनी अपेक्षाथी थयू एवं ज्ञानना आकार ने पराधीनता नथी। ज्ञान के अंदर में जो ज्ञेय पदार्थ है, शरीर मकान पैसा धन दौलत इत्यादि सब कुछ दिखता है, तो ज्ञेय है तो ज्ञान के अंदर में दिखता है, ऐसे ज्ञेयों की पराधीनता ज्ञान को नहीं है। वो ज्ञान स्वयं अपने सामर्थ्य से उस आकार रूप यानी वो ज्ञानाकार रूप रहती है, ज्ञानाकार रूप परिणमती है, ज्ञेय रूप नहीं परिणमती, ऐसा उनका वैभव है। क्योंकि जिनकी शक्ति है स्वच्छता निर्मलता उसके अंदर में स्वयं प्रकाशित होते हैं, और वो पदार्थों के अंदर में ज्ञेयत्व धर्म होने से, प्रमेयत्व धर्म होने से उसके अंदर में जनित जाते हैं। ज्ञान उसको जानने नहीं जाता, ज्ञान को उसकी अपेक्षा नहीं है, ज्ञान को उसकी सापेक्षता नहीं है। ज्ञान अपने स्वभाव से, अपने सामर्थ्य से, अपने से उस आकार रूप हुई है, वो उसका अपना खुद का वैभव है, वो ज्ञान का साम्राज्य है। क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। जब ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय में नहीं जाता, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं होता, ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का जो स्वभाव है, वो ज्ञान अपने आकार से, अपने सामर्थ्य से, अपने वैभव से उस आकार रूप परिणमित हुई है। उसके अंदर में ज्ञेयों का लेस मात्र कुछ भी उसके अंदर में नहीं है। लेकिन जीव मानता है कि ज्ञेय को जाने सो आत्मा, राग को जाने सो आत्मा, संसार के असंख्य पदार्थ को जाने सो आत्मा, ऐसा आत्मा नहीं है प्रभु, आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आचार्य भगवान अभी कहेंगे, लेकिन पहले अपने गुरुदेव श्री जिस तरह से कहते हैं दायाकार और ज्ञेयाकार, क्यों दायाकार जो है उसको लकड़ी की अपेक्षा नहीं है और ज्ञेयाकार जो है उसको ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वाधीन सत है, स्वतंत्र सत है, उनका स्वच्छ स्वभाव है, उसका निर्मल स्वभाव है, उस स्वभाव में ये पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिभास पड़ता है, जानने में आते हैं ज्ञेयत्व तो धर्म के कारण। तो इस ज्ञेयों की सापेक्षता ज्ञान को लेस मात्र भी नहीं है। ज्ञान को राग का ज्ञान नहीं होता, राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है ऐसा कहने में आता है, जैसे ज्ञान राग को जानता है ऐसा कहने में आता है, उसी तरह से राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है ऐसा भी कहने में आता है। सही में जैसे राग का ज्ञान नहीं होता ऐसे ज्ञान पर्याय का भी ज्ञान नहीं होता, वो तो ज्ञायक का ज्ञान होता है, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का है और ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान ते आत्मा, उस न्याय से ज्ञान स्व आत्मा है, तो उस ज्ञान के अंदर में आत्मा जानने में आता है। ज्ञान के समीप पर्याय के समीप ही आत्मा पड़ा हुआ है, आत्मा जानने में आता है। पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में वो द्रव्य ही जणाई छे, द्रव्य ज जणाई छे, द्रव्य ही अनुभूति में आता है, लेकिन वहाँ पे उसकी नज़र नहीं होने से, लक्ष्य नहीं होने से ये पर पदार्थ जो जानने में आता है, वहाँ लक्ष्य जाते ही उसके अंदर में अपनत्व होते ही इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। तो ज्ञान के अंदर में सही में तो अपना ज्ञायक जानने में आता है, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है वैसा भी नहीं है। जिसे परज्ञेय को ज्ञान नहीं जानता ऐसे ज्ञायक से भी ज्ञान नहीं होता, जिसे परज्ञेय से ज्ञान नहीं होता ऐसे स्वज्ञेय से भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पर्याय को ज्ञान पर्याय से ज्ञान में ज्ञान होता है।
पर्याय की 100% स्वतंत्रता साबित कर दी,
एकदम पर्याय की 100% स्वतंत्रता है, क्योंकि वो एक समय का सत है और सत हमेशा स्वतंत्र ही होता है, और सत को किसी की भी अपेक्षा नहीं होती, और सत निरपेक्ष होता है और सत अहेतुक होता है, सत को सतरूप परिणमने के लिए किसी का आधार की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वाधीन सत है, एक समय का संपूर्ण सत है, उस संपूर्ण सत कथनचित सत नहीं है, ये कथनचित अपने से और कथनचित ज्ञायक से ऐसा नहीं है। वो ज्ञान पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, जिस स्वभाव के अंदर में जिस तरह से पर प्रकाशित होते हैं उस तरह से स्व भी प्रकाशित होता है, तो प्रकाशित होना वो पदार्थों का ज्ञेयत्व धर्म है, और जिसके अंदर में जानने में आता है वो उनका ज्ञान का निर्मल स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव है, जिस स्वभाव के अंदर में दोनों जानने में आते हैं, जनित जाते हैं, सही माने में कहा जाए सोगानी जी के शब्दों में जनित जाते हैं, वो जानने नहीं जाता, उसकी निर्मलता के अंदर में जनित जाते हैं, और जब उस ज्ञान के अंदर में दोनों जनित गए उसका लक्ष्य जहाँ पर जाता है, पर के ऊपर लक्ष्य गया तो इंद्रिय ज्ञान का जन्म और अज्ञान हो गया, और स्व के ऊपर लक्ष्य गया तो अतिंद्रिय ज्ञान का जन्म होकर समकित हो गया, बस इतनी सी बात है। तो यही बात आचार्य भगवान कारण देके भी समझाएंगे, और जब इसको इस बात की पहचान होगी, इस बात का परिचय होगा, वस्तु की व्यवस्था समझ में आएगी कि ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञान का वैभव है, ज्ञान का साम्राज्य है, वो ज्ञान का शरीर से वो ज्ञान मटेरियल बना हुआ है। जैसे दर्पण के अंदर में मोर दिखता है, तो दर्पण के अंदर में मोर दिखता है, वो मोर दिखता है कि दर्पण का मोर है, वो दर्पण का मोर तो दर्पण है, दर्पण के अंदर में अग्नि दिखती है तो अग्नि का दर्पण है ना, दर्पण की अग्नि है, वो दर्पण की अग्नि है, दर्पण की अग्नि दर्पण होती है, वो अग्नि नहीं होती। यदि दर्पण की अग्नि के अंदर में सही माने में अग्नि होती तो दर्पण जल जाता, लेकिन वो बिल्कुल शीतल शीतल है। जैसे पर पदार्थ ज्ञेय है उसी तरह से स्व पदार्थ यानी ज्ञायक आत्मा भी ज्ञान के अंदर में ज्ञेय है। स्व ज्ञेय और पर ज्ञेय, अब स्व भी जानने में आता है पर भी जानने में आता है, ज्ञान की एक पर्याय के अंदर में स्व का जानना और पर का जानना एक साथ में होता है। अब उस समय की जो पर्याय है उसकी योग्यता के मुताबिक उसका लक्ष्य जहाँ पर जाता है, पर जानने में आता है तो पर के ऊपर लक्ष्य गया, पर के ऊपर लक्ष्य जाते ही उसके अंदर में अपनत्व होते ही इंद्रिय ज्ञान का जन्म होकर अज्ञान हो गया, और उसी ज्ञान की पर्याय में जहाँ पर जानने में आता है वहाँ पे ज्ञायक जानने में आता है। तो ज्ञायक के ऊपर लक्ष गया कि मैंने तो ज्ञायक जनाय छे, हूँ तो ज्ञायक छू, ज्ञायक जनाय छे न्या उभो न रहता, मैं ज्ञायक हूँ, उसके ऊपर जाते ही ज्ञायक का लक्ष होते ही संकित हो जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। ज्ञान की पर्याय एक, स्व और पर दोनों ज्ञेयों का जानना, वो ज्ञान की स्वतंत्रता के कारण, ज्ञान के स्वच्छत्व के कारण, ज्ञान का वो निर्मल स्वभाव के कारण, स्वज्ञेय और परज्ञेय दोनों ही उसके अंदर में जानने में आते हैं। अब उसका लक्ष्य जहाँ पर, लक्ष्य एक समय में एक का हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता, जानने में दोनों ही आते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि जहाँ पर, अब दृष्टि का कैसे वलन, कैसे पता चले कि उसका वलन क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, कि मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अभिप्राय है, कि मैं पर को जानता हूँ ऐसा अभिप्राय है। यदि मैं पर को जानता हूँ ऐसा अभिप्राय है, तो उसकी दृष्टि पर के ऊपर जाते ही उसके अंदर में अपना तो होते ही अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। और जाननहार जनाय छे, जाननार जनाय छे, ऐसी दृष्टि होते ही जाननार ही जानने में आता है, ऐसी समझ हो, ऐसा अभिप्राय हो, तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाते ही, ज्ञायक के ऊपर जाते ही, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अभिप्राय होने से अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होकर संकेत प्रकट हो जाता है। जब अनुभूति होती है तब तो वहाँ पे न तो ज्ञान है, न तो ज्ञायक है, न तो कोई ज्ञेय है, जो कुछ भी है वो स्वयं है। जिसको कर्ता कर्म का अनन्यपना कहेंगे वो भी अपना क्रम से ये बात भी आएगी कि अनुभूति में क्या होता है, कर्ता कर्म का अनन्यपना किसको कहते हैं, अपरिणामी क्या है और परिणामी क्या है, इसकी सारी चर्चा इसी गाथा के अंतिम तीन पंक्तियों के अंदर में आचार्य भगवान ने समाविष्ट की है। जब अनुभूति होती है तब क्या होता है, ज्ञान भी स्वयं, ज्ञेय भी स्वयं और ज्ञाता भी स्वयं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता का भेद नहीं होता, एक अभेद अनुभूति होती है, उस अभेद अनुभूति को परिणामी कहते हैं। अपरिणामी प्लस परिणामी, अभेद अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। उस परिणामी के अंदर में अभेद सुरक्षित रहता है, उस परिणामी के अंदर में अभेद आता नहीं है, उसके गुरुदेव श्री ने कहा अभेद जनाय छे, शुद्ध जनाणु, मन शुद्ध आया नहीं, लेकिन जब शुद्ध जानने में आता है तब मैं शुद्ध हूँ ऐसी दृष्टि होने से, ऐसा लक्ष्य होने से, ऐसा विश्वास होने से, ऐसा ज्ञान श्रद्धा होने से, जो आत्मा जानने में आया वही मैं हूँ। वह आत्मा आत्मा को जानता है वैसा भी नहीं है, आत्मा आत्मा को जानता इस अभिप्राय से भी अनुभूति नहीं होती, मैं आत्मा हूँ इस अभिप्राय से अनुभूति होती है, आत्मा आत्मा को जानता इस अभिप्राय से भी अनुभूति नहीं होती है, भेद हो गया। जीव को अनादिकाल से भेद का ही पक्ष है, और भेद का ही पक्ष होने से चिंतन मनन घोलन करते हुए अनुमान ज्ञान तक नहीं पहुंचता। जो अनुमान ज्ञान तक नहीं पहुंचे तो अनुभव ज्ञान में कैसे पहुंचे, और अनुमान ज्ञान में पहुंच भी जाए तो उसकी यदि कंटिन्यूटी नहीं रहे, निरंतरता ना रहे, तो अनुभव ज्ञान तक भी नहीं पहुंचता, अनुमान ज्ञान से भी वापस आ जाता है। तो एक क्रम है कि सामान्यतया पंचम काल का जीव जो वस्तु की व्यवस्था को समझकर मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा जाने और माने तो वो अनुमान ज्ञान में आता ही है, और अनुज्ञान अनुमान ज्ञान में जो आता है जिसको सविकल्प स्वसंवेदन कहने में आता है, जिसको निर्विकल्प वत कहने में आता है, जिसको स्वभाव जैसा है वैसा अनुमान ज्ञान में आ जाए, ऐसी एक स्थिति घटती है आत्मार्थी को। अनुभव के पहले जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा अनुमान ज्ञान में आ जाता है, अनुमान ज्ञान में आ जाता है, उसका मतलब ऐसा अनुमान ज्ञान आता है कि जब अनुभूति होती है, एक ज्ञानी को अनुभूति हो और अनुभूति के पश्चात विकल्प में आवे, तब जैसा आत्मा उसको ख्याल में आता है आत्मार्थी को, अनुभव के पहले अनुमान ज्ञान में वैसा ही आत्मा ख्याल में आता है। तो दोनों के अंदर में कोई अंतर नहीं होता, एक ही अंतर है कि ज्ञानी को आनंद का अनुभव होता है, आत्मार्थी को आनंद का अनुभव नहीं होता है, आनंद का अनुभव नहीं है, बस इतना फर्क। लेकिन आत्मा वैसा ही ख्याल में आ जाता है, भाषित हो जाता है जैसा अनुभव में ख्याल में आता है। उसके लिए बहन श्री बहन दृष्टांत भी हम लोग को दिया करती थी, दोनों बहनें उनको लक्ष्यगत कहते थे, स्थिति को लक्ष्यगत कहते थे। लक्ष्यगत माने वस्तु जैसी है वैसी ख्याल में आ गई, ज्ञान अनुमान ज्ञान के अंदर में आ गई, और जब ऐसा अनुमान ज्ञान के अंदर में आ जाती है तो फिर कुछ घंटों और दिनों का ही प्रश्न रहता, महीनाओं का प्रश्न नहीं रहता अनुभूति तक पहुंचने के लिए। अब सोगानी जी के शब्दों में कहे तो यथार्थ निर्णय, बेंसरबेन के शब्दों में कहे तो लक्ष्यगत, प्रवचन सार जय की असीमी गाथा के शब्दों में कहे तो सविकल स्वसंवेदन, निर्विकल स्वसंवेदन नहीं सविकल स्वसंवेदन। और यह वचनातीत है, वचनों के अंदर में इस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभूति में जैसा आत्मा ऐसा आत्मा उसको यहाँ पर ख्याल में आ जाता है, ऐसी एक अद्भुत परिस्थिति बनती है। और ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने दोनों बहनों से जब की थी तब ये कहा था कि इस बात की चर्चा अभी मत करना, जब समय काल आएगा तब योग्यता देखकर चर्चा करना। तो कई वर्षों तक दोनों बहनों ने इस विषय की चर्चा नहीं की थी, लेकिन जब की तब कुछ लोगों के बीच में की थी तब एक दृष्टांत दिया था कि क्या होता है कि सोनगढ़ स्टेशन पे एक मुमुक्षु उतरता है और उसको गुरुदेव के पास जाना है, और वो स्टेशन मास्टर को पूछता है कि गुरुदेव कहाँ बसते हैं, तो स्टेशन मास्टर उसको रास्ता दिखाता है कि आप यहाँ से सीधा चला जाओ, जहाँ तीन रास्ता का मोड़ आएगा वहाँ पे आप दाहिना मुड़ जाना, वहाँ पे पहला बायां रास्ता जो आएगा बायां रास्ता पे जाना, वहाँ पे फिर तीन रास्ता का मोड़ होगा, वहाँ से मानसतम दिखेगा, उस मानसतम की तरफ आप चलना, वहाँ पे बायां हाथ पे ब्रह्मचारी आश्रम दिखेगा, उस आश्रम के सामने आपको एक स्वाध्याय मंदिर के लाल नड़िया और नड़िया दिखेंगे, उस नड़िया के स्वाध्याय मंदिर के अंदर में दाहिने हाथ वाली जो रूम है उसमें गुरुदेव विराजमान है। अभी जो चला उस रास्ते को देखते 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 आश्रम तक पहुंच गया और स्वाध्याय मंदिर भी दिखा, तो गुरुदेव अभी नहीं दिखे, स्वाध्याय मंदिर दिखा गुरुदेव नहीं दिखे, लेकिन स्वाध्याय मंदिर दिखा तो बस गुरुदेव यहाँ पे बसते वो बात उसको पक्का हो गई, क्योंकि उसने जितने चिन्ह दिखाए थे उतने चिन्ह के मुताबिक उसका रास्ता मार्ग मिला। अब वो यदि स्वाध्याय मंदिर को देखकर हास करके बैठ जाए तो गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाएगा, और हमें तो गुरुदेव से ही प्रयोजन है ऐसा समझकर ऐसा जानकर वो वहां पे भी रुके नहीं और सड़सड़ाते अंदर चले जाए तो गुरुदेव के चरणों में अपने को पा लेता है। दूसरा दृष्टांत एक दिया कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, स्नान करते हुए पूरा बदन पे साबुन लगाया हुआ है और वो हाथ से साबुन सरकता है, क्योंकि हाथ भी चिकना है पूरा शरीर भी चिकना है, और वो साबुन सरकता है तो फिर वो साबुन को पकड़ने की कोशिश करता है, वो हाथ में आता है सरकता है, हाथ में आता है सरकता है, और जोर से पकड़ता तो साबुन हाथ में आ जाता है। उसी तरह से जो अनुमान ज्ञान में आया वो आश्रम तक पहुँच गया, साबुन हाथ में आ रहा है और सरक रहा है, और बस वो तो एक पकड़ मारे एक तराप मारे हटक से अंदर घुस जाए, पूरा श्रद्धा के बल से अंधा होकर मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा अपने स्वभाव का विश्वास करते हुए अंदर चला जाए तो सड़सड़ाहट आत्मा की अनुभूति हो जाती, अपना गायक गुरुदेव उसको मिल जाता। ये गायक गुरुदेव इतना सरल है, दिखता है उसको, वहाँ तक वो पहुँच भी जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको रुकना नहीं है और रुकते नहीं है। और किसी पुरुषों की सोगानी जी की तो यह स्थिति थी कि भूमिका आकर चली गई उसका भी पता नहीं चला, क्योंकि गुरुदेव के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। आश्रम आया स्वाध्याय मंदिर दिखा, कुछ नहीं दिखा, एक आत्मा ही दिखता था, तो तत्काल 2, 4, 6, 10 घंटे के अंदर में सुधात्मा तक पहुंच गए। तो ये अनुमान ज्ञान की एक ऐसी स्थिति सभी के जीवन में आती ही है, सब एकल स्वसंवेदन में, वहाँ पर वो रुकता नहीं, वहाँ पर तलप रहती है, धुन रहती है, मस्ती रहती है गायक की, और वहाँ पे वो खाते पीते उठते बैठते हलते चलते रोते सोते बस एक परमात्मा तत्व ही दिखता है उसको, जिसको परमात्मा तत्व ही दिखता है वो परमात्मा तक पहुँच जाता है, उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ये आत्मा की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि उसको यदि गुरुदेव चाहिए तो बस गुरुदेव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह से गायक गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जिसकी मस्ती हो मैं गायक ही हूँ, ऐसी जिसकी समझ हो उसको भगवान आत्मा सहज मात्र में प्राप्त होता ही है, वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसकी तो धुन रहती है कि मैं परमात्मा हूँ, बस मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं गायक, मैं ध्रुव, मैं चिदानंद ज्ञान बिन, मैं अपरिणामी, मैं निश्चल तत्व, मैं कुटस्थ तत्व, मैं एक रूप रहने वाला अनादि अनंत नित्य उद्योतमान स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति में हूँ। बस उसकी धुन रहती है, उस धुन के अंदर में, उस मस्ती के अंदर में सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर चले जाते हैं। और अपने दोनों बहनों की भी जीवन गाथा अपने को पता है कि जब उसको दोनों को धुन चढ़ी तब वो एक आत्मा के अलावा कहीं चैन ही नहीं पड़ता था, एक आत्मा के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कुछ प्रीति कहीं पे आती ही नहीं थी संसार में कोई भी चीज। वो सबको बोलते थे कि आप समझ लो कि हम मर चुके हैं, इतनी लुखास पर पदार्थों के प्रति, गेयों के प्रति, आसपास के संयोगों के प्रति इतनी लुखास हो जाती है, उतना सुखापन हो जाता है जहाँ पे भगवान आत्मा के अलावा कुछ प्यारा नहीं लगता, कुछ मीठा नहीं लगता। राग उसका पर पदार्थ के प्रति मर चुका होता है। वो कहते हैं, बहन कहती थी कि हमें मरी गया अच्छे जगत नहीं माटे। ऐसे जिसको दृष्टि हो जाए उसको स्वभाव के ऊपर दृष्टि न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अपन फिर मूल बात पे आवे तो जैसे पर पदार्थ ज्ञेय है ऐसे ज्ञायक भी ज्ञेय है। अब ज्ञायक त्रिकाल है, पर पदार्थ भी है। अब दोनों ज्ञान के अंदर में जनित जाते हैं। अब जनित तो गए लेकिन उस समय की पर्याय का वलन कहाँ पर है, उसका लक्ष्य कहाँ पर है, उसका एकत्व कहाँ पर है, उसी पर डिपेंड करता है इंद्रिय ज्ञान या अति इंद्रिय ज्ञान। पर जानने में आता है, ज्ञेय का ज्ञान होता है तो ज्ञेय के ऊपर दृष्टि जाते ही ज्ञेय ज्ञेय नहीं रहकर निमित्त बन जाता है और वैसा ही नैमित्तिक भाव यहाँ पर उत्पन्न होकर इंद्रिय ज्ञान का जन्म होकर अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। और उसी जगह पर जानने में आता ही नहीं, ये बात उसको समझ में आ जाए इस दृष्टांत के माध्यम से, आचार्य भगवान के इस सिद्धांत के माध्यम से, गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से, कि पर जानने में नहीं आता, जानना जनाए छे भगवान आत्मा ही जानने में आता है ऐसा समझ कर वो ज्ञायक के ऊपर लक्ष्य गया तो अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होकर, अत्यंत आनंद का जन्म होकर, सम्यक ज्ञान का जन्म हो जाता है। जात्यंतर श्रीमद जी कहे सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए। शू सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए, न्यारा का न्यारा रहता है, सदा जानने में आता है, सदा जानने में आता है। और कहाँ जानने में आता है, ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। तो जानने में आता है तो मेरे को क्यों जानने में नहीं आता, तू नहीं जानता उसके लिए तो उपयोग वहाँ पे नहीं रखता, तो उपयोग में उपयोगवान को नहीं देखता, तो उपयोग को झुकाना चाहता है लेकिन मैं उपयोगवान हूँ ऐसा तू नहीं जानता। उपयोगवान जानता तो उपयोग उपयोगवान में एकाकार होकर समकित रूप परिणमित हो जाता है। मार्ग बहुत सरल है, पूज्य गुरुदेव श्री ने मार्ग अत्यंत सरल कर दिया, अत्यंत सुगम कर दिया, सहजता से सुधात्मा को हाथ में दे दिया, उसको प्राप्त करने की विधि भी बतला दी। उसके लिए कृपालु देव कहते हैं ना कि मोक्ष मार्ग तो नियत है, दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग तो नियत है लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि भी नियत है। कि ज्ञान के अंदर में स्वज्ञेय और परज्ञेय दोनों ही जानने में आते हैं, और स्वज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता और परज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान अपने सामर्थ्य से, अपने स्वभाव से, अपने वैभव से, अपनी स्वच्छता से, अपनी निर्मलता से स्व और परज्ञेय उसके अंदर में जानने में आते हैं। अब उसका लक्ष्य, उसका अहम जहाँ पे हो, उसका वलन जहाँ पे हो, उसका एकत्व जहाँ पे हो, उसकी समझ जैसी हो, उसका निर्णय जैसा हो, उसके मुताबिक उस पदार्थ के ऊपर उसकी दृष्टि जाकर, उसमें अपनत्व होकर, उसमें एकत्व होकर, उसमें ममत्व होकर, पर पदार्थ में जाए तो मिथ्या ज्ञान, स्व पदार्थ के ऊपर जाए तो सम्यक ज्ञान, एक ही ज्ञान के अंदर में दोनों ही जानने में आते हैं। उसका लक्ष्य जहाँ पर जाता है उसके ऊपर से सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान रूप वो जीव परिणमित हो जाता है। तू एक बार जानकर तो देख, अंदर में जाकर देख तो सही, नजर तो कर। गुरुदेव ने कहा नजर तो कर, भिन्न भिन्न दिखने में आएंगे प्रभु। राग जानने में ही नहीं आएगा और ज्ञायक ही जानने में आएगा, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। लेकिन तुझे राग की प्रीति होने से राग के ऊपर दृष्टि तेरी चली जाती, सही में राग जानने में नहीं आता क्योंकि तो ज्ञान पर्याय का ज्ञान है और ज्ञान पर्याय का ज्ञान में राग कहाँ से आवे, क्योंकि उससे तन्मय नहीं, तन्मय ही नहीं है, अतन्मय है, वो परद्रव्य है। जबकि ज्ञान ज्ञायक से तन्मय है, कथनचित अभिन्न है,
और कथनचित अभिनय उसमें उसका प्रतिवास भी है और उसका जानना भी है, क्योंकि कथनचित तन्मय है और कथनचित अभिन्न होने के वजह से ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, और राग से सर्वथा भिन्न होने के वजह से वो जानने में नहीं आता है। हाँ, संयोग, संयोग देखकर उसको शब्द कहा, संयोग देखकर शब्द कहा तो उसने उसको सच्चा मान लिया, तो निमित बन गया, निमित बन गया तो ऐसा निमित ही हुआ तो ज्ञान रूप परिणमित हो गया। दो सपना है कि वो अपने स्वभाव की ओर नहीं देखता, ज्ञान आत्मा का है तो ज्ञान सो आत्मा ऐसा नहीं देखता, और ज्ञान में राग जानने में आता उसको देखता है। दोनों के बीच में जमीन आसमान है, सही माने में जानने देखा जाए तो ज्ञान के अंदर में पर गए जानने में ही नहीं आते, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक सदा ही जानने में आता, सदा ही जानने में आता। वहां पे भ्रांति होती है, वहां पर निभ्रांत हो जाता है। अब दृष्टि उसकी कहां पर है, उसकी कीमत है। सभी निभ्रांत स्वरूप भगवान आत्मा है ऐसा जाने, ऐसा समझे, ऐसा माने, और मानते ही स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाते ही परम शुद्ध निश्चय का विषय ऐसा अपना परमात्म तत्व सबके परिणामों में सहज मात्र में उदित हो, उसी मंगल भावना के साथ
दृष्टि लक्ष्य नजर उपयोग कोई कहना।